हम शुरू में बात कर चुके हैं कि सूरह फरकान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और पाक की सच्चाई की बात बहुत की गई है। यही वो दो बड़ी चीजें थी जो लोगों को कल्बी अपने रास्ते में रुकावट लगती थी। वो लोग जो बाप दादा के तौर तरीकों पे जीना चाहते हैं, जिनकी जिंदगी का मकसद ही ये होता है कि हम वही करेंगे जो हमारे बड़े करते थे, हत्ता के नेकी का भी एक खुद साख्ता मेयार ये ठीक मेयार कोई भी, बस हम वो करेंगे जो हमारे बड़े करते थे। मक्का वालों का भी मसला कुछ इसी किस्म का था, ना मानना चाहते थे ना झुटला सकते थे। आप ये कह लें, हमारे यहाँ कहते हैं ना कि ना करने के हालात है और ना कभी किसी काम से रुकने वाली पूरी कैफियत है, लिहाजा एतराज बराए एतराज करते रहते थे। हम इन आयात में देखेंगे कि दो बड़े एतराज थे उनके। पहला क्या था, وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا। जिन लोगों ने नबी की बात मानने से इनकार कर दिया है वो कहते हैं कि ये फुरकान एक मन घड़त चीज है जिसे इस शख्स ने आप ही घड़ लिया है और कुछ दूसरे लोगों ने इस काम में इसकी मदद की है। बड़ा जुल्म और सख्त झूठ है जिस पर ये लोग उतर आए हैं। तो क्या कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान लेकर आए हैं, नाउज़ु बिल्लाह, ये आपके अपने जहन की इख्तरा है, आपने खुद ही ये बातें बैठ के कह ली सुन ली और आप हमारे सामने आ गए। इसके बारे में पीछे आपको याद होगा कि इब्तदाई सूरतों में हमने पढ़ा कि मक्का में कुछ लोग गुलाम थे जो अल्लाह के नबी सल्लम की खास तवज्जो के हामिल थे। गुर्बत की वजह से और उनकी सच्चाई की वजह से अल्लाह के नबी उनके सुनते बैठते थे। उनमें से कुछ जो थे वो पहले से नसरानी भी थे, यानी क्रिश्चियनिटी पर थे। तो जब अल्लाह के नबी को उन लोगों के साथ उठता बैठता देखा तो इन लोगों को और तो कोई बात सूझी ना, क्योंकि खुद तो किसी को आता कुछ नहीं था, ये बातें तो बिल्कुल उनके लिए नहीं थी, उनके तो बाप दादा ने भी इतना प्यारा कलाम नहीं सुना था। तो नतीजा क्या हुआ कि वही बात जो कल के लोग भी करते थे आज के भी करते थे, ये कहने लगे कि अल्लाह के नबी को तो ये गुलाम कुछ सिखाते पढ़ाते हैं, सुन सुना के आ जाते हैं और बताने लग जाते हैं। हालांकि उनको ये पता ही नहीं है कि वही इलाही का इल्म सुनने सुनाने से नहीं आता, ये जब तक दिल पे नहीं आता, जब तक कोई इसको दिल पे ना ले उस वक्त तक ये बात समझ ही नहीं आती। अब देखिए कल उन्होंने ये बात कही, इस तरीके की बात करके अल्लाह ताला की इस बात को ले लिया, तफकत जाऊसुल मौबजूरा। यहाँ नोट कर लीजिए, इनका जुमला नहीं है, उनकी बात खत्म। आप देख रहे होंगे कि आखरूना के बाद जीम आ रहा है। जीम का मतलब तजवीद की इस्तेलाह में जायज है, मुराद क्या है कि यहाँ रुकना जायज है। कहा कि अल्लाह ताला के नबी को जो बात कही जा रही है ये बात असल में झूठ बांधा हुआ है, इफ है और बांध लिया। इफ फिर पीछे वाली बात पे जाइए, सूरत नूर में हम पढ़ चुके हैं कि एक बहुत बड़े तूफान को कहते हैं, घर लेने को कहते हैं। यहाँ मुराद यही है कि ये तो इतनी मुख्तलिफ बात है, हमने तो कभी सुनी नहीं थी, देखो कितनी जरूरत है इनकी, इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। यहाँ इफ का ये मानी बनता है और इस तरह से ये कर करा के ये अपने आप को मुतमईन कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अकेले तो ये भी नहीं कर सकते थे, और कीजिएगा, जब दिल में किसी के लिए हसद या बुग़्ज़ होता है ना तो इंसान ना मानने की कसम खा लेता है। उनको कुरान की सच्चाई तो दिखती थी, ये तो वो चीज़ है जो दिलों में पता चलता है इसका असर कि ये सच है। तो जब अल्लाह के नबी की जाहिर है कि इस बहाने कुछ ना कुछ तारीफ और तकदीस की नौबत आती थी तो उस वक्त फिर कहने लगते, नहीं ये भी लगता है खुद नहीं किया, चलो मान लेते हैं ये कह खुद से घड़ी हुई चीजें, लेकिन फिर भी हम कहेंगे ये भी खुद नहीं घड़ी बल्कि इसमें भी किसी दूसरे ने मदद की है। देखिए जब कोई किसी की मुखालफत की कसम खा लेना तो वो इसी तरह के इतराज करता है। मसलन अगर किसी को सूरज से चिढ़ हो जाए तो कहेगा ये सूरज थोड़ी है, खुद ही कुछ भी नहीं है, देखो इतना आंखों में जाता है, इतना छुपता है, हा? और देख उसकी रोशनी खुद भी कुछ नहीं है, ये तो बल्कि किसी और चीजों से रोशनी के आ रहा है। यानी ना मानने के सौ बहाने। कल के लोग भी इसी किस्म की बातें करते हुए दिखते थे, आज के भी यही दिखते थे। फिर जरूरत बढ़ती है, यहाँ जो लफ्ज है ना जुल्मन, जुल्म तो हम जानते हैं, चीजों को उसका हक ना देना, और जूर बहुत खिलाफ अकलवाद, जूर असल में झूठ की शिद्दत को कहते हैं। ये बहुत पढ़ेंगे आप अगली पारों में, और मक्की सूरतों में खास तौर पे ये था। आप इसको यूं समझें, चलिए हम इसको हल्के से अंदाज से देख लेते हैं, कोई एक चीज जो बचपन से आप होते करते देखते आए लोगों को। चलिए रबी अव्वल को ले लेते हैं, कोई बात नहीं। रबी अव्वल को मिलाद मनाना, कोई बच्चा बचपन से लेके जवानी से, अब आप 40-50 की उम्र को एक औरत पहुंच चुकी, वो तब से देखती है। अब एकदम अगर उनको लगे कि अच्छा भाई ये तो अबू बकर सिद्दीक, उम्र फारूक, अल्लाह के नबी, पिछले अगले किसी ने किया ही नहीं, चलो भाई इसकी कोई दलील दिखाओ, तो बस ऐसे लोगों को ऐसे वक्तों में ये चीज क्या लगेगी कि तो बहुत बड़ा झूठ है। उम्मीद है कि बात समझे होंगे जूर की। जूर क्या होता है कि जिसको बंदा अपने जहन से ही समझने लग जाए कि ये सही नहीं है। हाँ ये कैसे हो सकता है, हमने तो ये बात कभी नहीं आज तक सुनी। अच्छा तो फुला छोड़ दीजिए उनको, आप ले लें। तो जब भी किसी की तालीम, अल्लाह के नबियों का पैगाम, जब लोगों के बाप दादा के रस्म और रिवाज और तौर तरीकों और इबादत के तरीके जो उन्होंने अपनाए होते हैं उनसे टकराता है, तो उस वक्त लोग वाकई सीखपा होने लगते हैं। कहा इस तरह की भी बात नहीं बल्कि इससे भी बढ़ के, वकालू असातीरुल अव्वलीन इक्ततबहा, कहने लगे ये तो पहलों की कहानियां हैं जो इसने लिख ली हैं। इक्ततबहा का रूप देखिएगा, काफ ताबा, कतबा तो कहते हैं ना लिखने को, लेकिन यहाँ एक ता बीच में और कहां से घुस गई, तो नोट कर लीजिए, इक्ततबहा मन घड़त चीज लिखने को कहते हैं। कतबा होता है कुछ भी लिखना, और एक ततबा आप सोचिए जरा, उर्दू में एक लफ्ज होता है हिसाब, कोई आपका ले रहा है, और एक होता है इहतसाब, तारी ना हमें, तो बस ये वही चीज है, ये सब में एक बाप का फर्क होता है। तो मन खड़ा चीज को लिखना और लिखवाना, डिक्टेशन के मानों में कहते थे कि ये तो पिछलों की कहानियां हैं जो इसने खड़ ली हैं, नकल कर रहा है इनको। फहियतुम ला अलैहि बुकरतम व असीला, वो इसे सुबह शाम सुनाई जाती हैं, यानी ये तुम पर आके सुबह शाम जो बातें पढ़ता पढ़ाता सुनता सुनाता है, असल में ये पिछलों की कहानी है। और असातीर अस्तूरत उनकी जमा, पीछे हम देख चुके झूठी कहानी को कहते हैं। कुरान पाक में पिछली कौमों के किस्से, अंबिया कराम के किस्से जब सुनते तो इसी किस्म की गलत फहमियों का शिकार हो जाते, और वो गुलाम यसार, जिबर, अदास वगैरह इस तरह के नाम हमें मिलते हैं कि जिनके बारे में ये ऐसी बातें करते थे। अब देखिए कि ये वही एतराज है जो आज के दौर के मुस्तशरिकीन भी कुरान पाक के खिलाफ पेश करते हैं। मुस्तशरिक किसको कहते हैं? हिस्टोरियंस, जो इस्लाम की हिस्ट्री लिखे लेकिन वो नॉन मुस्लिम। आपको हैरत हुई होगी, हैरत की कोई जरूरत नहीं है, आज भी मुसलमानों की किताबों, इनकी हिस्ट्री को पढ़ने पढ़ाने वाले लोग जो हैं वो अक्सर नॉन मुस्लिम हैं। अब वो तक है कि फैक्ट्स तो देने ही होते हैं, तारीख झूठ पे तो नहीं बन सकती, लेकिन जहां भी मौका आता है ना तो वो आड़ लेकर अपने अकायद को पेश करने की और इस्लाम के मिजाज को और इस्लाम की लोगों की नजरों में बुकत को कम करने के लिए इस तरह की बातें करने लगते हैं। तो वही चीज आज भी कहते हैं, ये कैसे हो सकता है। अब देखिए कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ये बचपन में वो हैरा राहब से मिले थे। अगर आपने कभी सीरत पढ़ी या सुनी होगी तो आप देखेंगे कि नबी सल्लम बिल्कुल बचपन में बुहैरा राहब से मिले थे। कब? जब आप बिल्कुल लड़के थे, आपके चचा के साथ आप सफर पे गए, तजारत का सफर था, और आप उस वक्त जाने लगे थे आगे, लेकिन उसने मना कर दिया कि मैंने इस बच्चे को देखा, इसके अंदर वो खसूसियात दिखी जो कि आने वाले नबी में होंगी, तो आप जिस तरफ चल रहे हैं वहां यहूद की कसरत है, तो ऐसा ना कि उनको पता लगे और बच्चे को नुकसान हो तो आप इसको लेके वापस चले। तो लिहाजा आपके चचा ने फिर आपको वहीं से वापस कर दिया। अब देखिए कि नबी सल्लम के जो उस दौर के साथी थे उनको ये वाक्य पता था, लेकिन कभी मक्की दौर में किसी ने ये नहीं कहा कि आप बचपन में बुहैरा राहब से जब मिले उस वक्त ये सारे मजामीन आपने सीख लिए, ना कभी किसी ने ये कहा कि जवानी में जब आप सफरों पे जाते थे तो वहां से तुमने ईसाई राहबों और यहूदी रबियों से ये बातें ले ली। क्यों? इसलिए कि इन सारे सफरों का हाल इनको मालूम था। ये सफर अकेले नहीं होते थे, काफिलों में होते थे, और वो जानते थे कि इनमें कुछ सीख आने के इल्जाम अगर हम लगाएंगे तो हमारे ही लोग हमें झूठा करार देंगे। हाँ, फिर आप देखिए कि इससे क्या पता चला कि जब नबूवत का दावा हुआ, असल मसला तब आता है। 25 साल की उम्र से एक शख्स तजारती सफर शुरू किए हुए हो और आप देखिए 40 साल की उम्र तक क्या वो खामोश रहेगा, क्या सारे इन छुपा रहा, एक लफ्ज ना बोला, चले तजारती काफले हुए, चले बखैर राहब से मिले, चले कुछ ना कुछ हुआ होगा, खामोश रहे और एकदम आके कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, तो ये बात झूठ है। जरूरत है इस बात की कि दिल से तासुब को दूर किया जाए। उस दौर में भी यही बातें थी, आज भी यही बातें करके लोगों को पेश किया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो इल्म था वो पिछले लोगों का इल्म था। आप देखिए कि आप जरा कभी पिछली कहानियां कोई सुने सुनाए, क्या उसमें और आपको कुरान के वाक्यात में कोई रब दिखता है? बिल्कुल फर्क है। एक उम्मी अनपढ़ जिसको अपना नाम नहीं लिखता आता, वो कैसे सिर्फ किसी से एक बात सुने और आके पूरी की पूरी इस तरह से बयान कर दे कि जैसे कि कोई किसी को डिक्टेट कराता है। डिक्टेशन का अंदाज है ना, और ये जो लफ्ज है ना अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया इधर के, वो कहा करते थे फाहिया तुम ला अलैहि, तो तुम ला का रूट क्या होगा, तामीम लाम, नहीं तुम ला का रूट है मीम लाम लाम। कहाँ पढ़े आपने? सूरत बकरा में पढ़ा, तवील आयत में पढ़ा, आयते दैन में पढ़ा, क्या थी याद आ रहा? इमला इमला फलयुम लिल्लजी अलैहिल हक, तो इमला बोरियत को भी कहते हैं क्योंकि जब कोई बोलता है डिक्टेट करवाता है तो बोरिंग होने लगती है चीज, और थकने को भी कहते हैं क्योंकि इंसान इससे थकता है। तो बेसिकली डिक्शनरी में इमला कहते हैं एक बोले और दूसरा लिखे। सूरत अनफाल की आयत 31 में भी बिल्कुल यही इल्जाम इन्होंने लगाया था कि ये आयतें तो तुम पे पढ़ी जाती हैं। आप देखिए कि एक ही मजमून की आयतें आप मुख्तलिफ जगह पढ़ते हैं ना, तो बस अगर लोग कहते हैं बार बार ये मजमून क्यों आ रहे हैं, हमने तो सूरत बनी इसराइल में बड़ी डिटेल से ये टॉपिक पढ़ा, फिर अनफाल में पढ़ा, फिर बकरा में पढ़ा। तो याद रखिए कि तकरार मोहब्बत की अलामत है, मजा आता है। टीवी में आपको एक ऐड कई बार दिखाते हैं तो के लोगों के जहनों में जम जाए, और जिनको अच्छी लगती है वो सीन को बार बार पलट के देखते हैं फिल्म का जो उनको अच्छा लगे। हाँ, कुरान की आयतें उसको बुरी लगती हैं जो मानना नहीं चाहता। कभी दुनिया में भी आप देखिए किसी को कहना उठो नमाज पढ़ो, आप शायद दूसरी बार कह देंगे ना, देखा आप बार बार ना मुझे कहो, तकरार ही शुरू कर दी है, पीछे ही पड़ जाते हैं। हाँ, जिनको एक बार भी नहीं मानना उनको तो दो बार का कहा हुआ भी बार बार का कहा हुआ लगेगा। फिर एक और वजह नोट कीजिए कि ये टॉपिक्स बार बार क्यों आते हैं, क्योंकि कुरान पाक तालीम के लिए आया है और सीखने के लिए तकरार की जरूरत होती है। एक आयत आप याद करते हैं तो कितनी दफा याद करते हैं, तो लिहाजा इस पे गम करने की बजाय, गुस्से में आने की बजाय इस चीज की फिक्र करनी चाहिए कि अल्लाह अपने नबी के जरिए कितना प्यारा कलाम नाजिल करता था, आज ही नहीं कल भी लोगों को अच्छा नहीं लगता था। आज तो कोई कह सकता है ना कि पढ़ाने वालों को अच्छा पढ़ाना नहीं आता, बोलने वाले अच्छा नहीं बोलते, गुस्से में आ जाते हैं या बहुत ही नरमी में आते हैं। जरा सोचिए कि कुरान हो अल्लाह का और जुबान हो नबी की और नाजिल हो रहा हो दिल पर, फिर भी लोग कह दे कि ये तो आपने एक बात कर ली है असातीर उलवलीन, ये तो पहलों की कहानी है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि दिलों का हाल क्या होगा। बंद दिलों की ये अलामत होती है, आज भी उन्हीं को कुरान अब पुराना लगता है जिनके दिल के कबाड़ बंद हो चुके हैं। वो किस्सा गोइयां सुने, वो ओल्ड सॉन्ग सुने, शौक से सुने, पुरानी फिल्मों के टुकड़े देखें, जरूर देखें, उनको पुराने सिंगर्स अच्छे लगे, नमक मर्च मसाले लगा के सुने, 10-20 साल पहले के ड्रामे दोबारा रिक्वेस्ट करके सुनवाए, देखें, कोई बुरी बात नहीं। और जब कुरान की बात आए तो कहते हैं कि ये तो ओल्ड डेटेड बुक्स है, इसको क्या करना है आज के दौर में पढ़ के, कैसी बातें करते हो, अल्लाह ताला कहते हैं इनको नहीं समझ आता। अल्लाह का नबी जिसकी फसाहत और बलागत, जिसके अंदर इतनी अल्लाह ताला ने हिकमत भरी हुई थी, उसकी जुबान से ये आयतें नाजिल होती हैं फिर भी नहीं लेते। आपकी जुबान से तो फूल झड़ते थे, और फूल एक रंग का नहीं होता, कहीं सुर्ख होते हैं, कहीं पीली, कहीं सब्ज, कई किस्म के पत्ते पत्तियां होते हैं। लोग तो उसकी खुशबू से अपने सीने को मुअत्तर करें, लेकिन जिनके दिलों में चिढ़ होती है उनको फूल भी कांटे लगते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आप इनको छोड़ दीजिए, ये तो ऐसी बातें करेंगे ही। बुकरतन का लफ्ज सुबह के लिए एएम्स और असीला शाम का वक्त पीएम्स के मानों में। قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, आप फरमाइए कि उतारा है इसको उस खुदा ने जो जानता है आसमानों और जमीन के सारे राजों को। इन्नहु काना गफूरर रहीमा, और वो है ही बहुत बख्शने वाला और मेहरबान। अल्लाह की जात वो है जिसको जमीन और आसमान की सारी बातों का पता है। बात को जाने दो, छोड़ो। अल्लाह ने अपने रसूल को ये नहीं कहा कि तुम फरमाओ कि ये सुने सुनाए नहीं, प्लीज ट्रस्ट मी, बिलीव मी, कसम से नहीं, मत कह दो इनको, अल्लाह पे बात डाल दो। इससे पता चलता है कि जब कोई सिर्फ बहस बराए बहस करता है ना, तो उसकी बात को नहीं सुनना चाहिए। कहिए सलीमुल खबीर का कलाम है जो हर राज से वाकिफ है। अगर ये अपनी हठधर्मी नहीं छोड़ते, हक को कबूल नहीं करते, तो फिर इनको फिक्र करनी चाहिए। और अगर इसके बरक्स अगर ये अपनी हठधर्मी छोड़ दे, हक को कबूल कर ले, तो अल्लाह अपनी मगफरत की चादर से इनको ढांप लेगा, अपनी रहमतों के दरवाजे इनके लिए खोल देगा, इनकी पिछली खताओं को माफ कर देगा। कितना प्यारा यह मानी है ना, गफूर रहीम का। अल्लाह के नबी पे इतराज करने वाले, आपकी बातों पे आके इस तरह की बातें मुंह में कहने करने वाले, उनको भी अल्लाह उम्मीद दिलाता है, तो हम कैसे मायूस हो सकते हैं? हम कैसे इन चीजों को लेके आ सकते हैं? जो इस कायनात के भेद जानता है, जो दिलों के भेद जानता है, क्या फिर वो कुरान की आयतों को कहाँ उतारना है, कब उतारना है, क्या उसको नहीं जानता? आज देखिए 1400 साल हो गए, इससे भी ज्यादा 15वीं सदी चल रही है, एक लफ्ज कुरान पाक का नहीं बदला। और वक्त के साथ साथ ऐसे ऐसे उलूम और फनून ईजाद हो रहे हैं कि जो हमारे कुरान को और ज्यादा खूबसूरत करके दिखा रहे हैं। सिर्फ हिंसों की गिनती देखें, अक्सर ऐसी ईमेल्स आपको भी आती होंगी, किसी ने पूरे कुरान के लफ्ज गिन दिए, दुनिया का लफ्ज इतनी दफा है तो आखिरत का इतनी दफा है, और देखा तो बराबर है। फिर किसी ने शैतान का लफ्ज गिना और साथ फरिश्ते के गिना, जन्नत है तो जहन्नुम है, जमीन है तो आसमान। एक पूरी ईमेल है मेरे पास रखी हुई कि एक एक लफ्ज टैली करता है। कई लोगों ने इसके फिर नुकतों को गिना, यानी कंप्यूटर ने तो हर चीज को सेव कर दिया ना। तो इतना प्यारा कलाम जिसको तुम छोड़ के जी सकते हो। अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या वो जब तुम्हें कलाम देगा तो क्या वो अच्छा कलाम होगा कि बुरा देगा, और जिसको नहीं मानना तो वो ना माने, ऐसे क्या लोग हैं। फिर एक छोटी बात, आखिरी बात इस पे करके फिर आगे देखते हैं कि ये जो बड़े इतराजात करते थे कि अल्लाह के नबी चंद लोगों से ले आते थे और वो अद्दास था और या फिर यसार था या जबर था, लेकिन कभी सोचे कि लाते क्यों थे? कुछ जहन में पॉइंट आते हैं ना इसके सुनने के बाद, क्यों लाते थे? या तो ये था ना कि कुरान की आयतें लाते ही फौरन आपके लोग सीने लगे, हाथ पांव चूमे, आपको सरदार बनाए, पीर बना ले, कुछ भी नहीं। सब जानते हैं कि उस वक्त इस्लाम की बात करने का नतीजा मारपीट थी, कोई ग्लैमरस दीन नहीं था, कोई लोगों के जहनों में रश्क नहीं आता था कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले को देखकर। वो तो ये कहते थे कि ये क्या मुश्किल हो गई है, तो क्या अल्लाह के नबी ऐसे वक्त में ऐसी बातें लाकर आप एल मुझे मार वाली बात करेंगे? सोचिए, बात बनती है ना। ये जैसे आज के दौर को आप देख लें कि कोई साइंस पढ़े, कोई कंप्यूटर सीखे, कोई इंग्लिश बोले तो लोग खुश होंगे, कोई कुरान पढ़े तो कितने हो जो खुश हों। तो अगर ये सवाब ना होता, अगर आप बताइए कि अल्लाह का हुक्म ना होता, तो क्या आप यहाँ रोज आते, बैठते, सीखते? सिर्फ अगर ये शौक ही होता तो ये शौक तो माशाल्लाह पूरा हो चुका होता। कौन सी चीज है जो आपको यहाँ ला के बिठाती है? मौसमों की शिद्दतों में, गर्मियों में, सर्दियों में बच्चों को आप साथ लेकर आते हैं, वजह क्या? क्योंकि आपको समझ आ गई कि ये आपका कलाम है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती। और आप देखिए कि जो लोग थे वो अजमी थे। दूसरी एक और रीजन नोट कीजिए कि जिनके नाम लेते थे वो अजम से थे। तो अरबी कलाम इतना प्यारा, तबारक अल्लज़ी बियदिहि अल-मुल्क, कितना रिदम है। क्या एक अजमी शख्स ऐसी खूबसूरत अरबी बोल सकता है या अरबी का ऐसा कलाम ला सकता है? मुश्किल क्या है भाई, मान जाओ, नहीं अमल करते ना मानो ना करो, लेकिन मान तो जाओ। फिर एक तीसरी वजह है कि क्या उन गुलामों को उनके मालिकों ने आजाद छोड़ा हुआ था? काम काज छोड़ के और जाके अल्लाह के नबी को पढ़ाना लिखाना शुरू करें? कुछ भी नहीं। फिर एक चौथी वजह ये भी है कि सिर्फ अल्लाह के नबी को ही वो क्यों सिखाते थे, औरों को सिखाते? हम जानते हैं कि मक्का में बहुत सारे लोग थे, पढ़े लिखे भी थे उनमें चंद गिनती के, بلکہ پڑھے ہوئے کافی تھے لوگ وہاں، اور خاص طور پہ مشرقین میں سے، ان کو بھی انہوں نے پڑھا دیا تاکہ وہ بھی سیکھ لیتے، ان سے بات کر لیتے. تو ایسی باتیں کر کے اصل میں لوگ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں من گھڑت باتیں کر کے لوگوں کے ذہنوں میں آپ کی یہ بات پلیوٹ کرتے ہیں. اب اگلا اعتراض دیکھیے گا. پہلا اعتراض جہاں پہ پورا ہوا کہ قرآن جو ہے وہ آپ نے سنی سنائی باتوں کے ذریعے ہمیں دیا، قرآن کا جو اعجاز تھا اس کو ماننا نہیں چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ایک اور عذر لے کے آگے، اور وہ کیا؟ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، اور کہتے ہیں یہ کیسا ہے رسول جو یاکل الطعام، کھاتا ہے کھانا، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور چلتا پھرتا ہے بازاروں میں. اسواق سوق کی جمع، سوق بازار کو کہتے ہیں، تنگلیوں کو بھی کہتے ہیں، یہ جو پاؤں کی ہوتی ہے نا سوق. ساق کا لفظ پڑھیں گے آگے جا کے ان شاء اللہ تعالیٰ. تطفت ساق ون بساق، سورہ قیامت میں آتا ہے. پھر اسی طرح غالباً سورہ معارج میں بھی آتا ہے کہ ویکشف ون ساق. تو ساق سوق یہ سب ایک ہی روٹ کے لفظ ہے. اور یمشی مشی سے ہے، میم شین جا یا میم شین وائس کا روٹ ہوتا ہے. انداز جو ہے نا مالی حاضر رسول، یہ تمسخر کا انداز ہے، مذاق. پھر اس میں تعجب بھی ہے. لکھ لیجئے مالی کا جو لفظ ہے نا، مالی جس کو جس طرح ہمارے زبان میں کہتے ہیں نا، اس کو میں کیا سمجھتا ہوں، میری نظروں میں اس کی کیا اہمیت ہے. تو مالی کا لفظ نمبر ایک تعجب کے لیے ہے، دوسرا اعتراض کے لیے ہے، تیسرا تمسخر کے لیے مذاق اڑانے کے لیے، اور چوتھی بات تحقیر کے لیے، حقیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کرنے کے لیے. قرآن پر اعتراض کرنے کے بعد اب رسول پر اعتراض ہو رہے ہیں. کیسا ہے نبی، بازاروں میں جاتا ہے، دیکھو چلتا پھرتا ہے. لوگ چاہتے ہیں نا کہ دیندار تو بازار کے پاس سے بھی نہ گزرے، اور دوسرا جائے وہاں جس حال حلیے میں، جہاں دوسروں کو دعوت گناہ دے، کوئی بات نہیں، وہ تو ہیں ہی بے دین. اور دیندار پورے پردوں میں اپنے آپ کو چھپا لپیٹ کے ایک دعوی کی نیت سے یا ایک دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا چلا جائے، تو لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اچھا جی یہ بازار میں جاتے ہیں. حالانکہ نبی کے بازار میں جانے سے مراد تھا ان کا معاش، کیونکہ مردوں کو معاش کے لیے عموماً باہر جانا پڑتا ہے. تو ان کو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی ہیں، ایک وقت میں ہمیں مسجد نبی میں قرآن بتا رہے ہیں، اپنے پیاری زبان سے نکلے ہوئے لفظ جن کو ہم حدیث کی صورت میں جمع کر رہے ہیں وہ کریں، اور اگلے لمحے ہم کبھی ان کو دیکھتے ہیں تو یہ بازار میں کوئی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں، کبھی چمڑا بیچ رہے ہیں، کبھی کوئی اور ٹریڈنگ کر رہے ہیں. تو یہ کیسا رسول ہے؟ آج بھی آپ ذرا سوچیں، ایک شخص جو مسجد میں امام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑی آنر دی، اللہ نے اپنے کام کے لیے چنا، اب فجر کی نماز پڑھا دی. آپ کیا چاہتے ہیں کہ امام صاحب جب فجر کی نماز چلے سن رائز کے بعد اشراق پڑھ کے سوئیں اور ظہر تک سوتے رہیں؟ اگر کوئی اور کام نہ کریں اور صرف ان کو نمازیں پڑھانی ہیں، تو پھر آپ تو یہ کہیں گے کہ امام صاحب آپ کو تو کوئی حق نہیں ہے نہ 8-10 گھنٹوں کو استعمال کرنے کا جو فجر سے ظہر کے بیچ میں، کبھی 8-10 ہوتے ہیں، کبھی 5-6 بھی رہ جاتے ہیں، تو آپ تو بس بیٹھے رہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نماز کا انتظار کریں. یہ ہے وہ سوچ جس نے اسلام کو پیچھے کر دیا دوسرے دینوں سے. آج کے دور میں کچھ لوگ آج بھی دین کے ساتھ اور دینداروں کے ساتھ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں. اسی سے پھر چندہ سسٹم ایجاد ہوا، اسی سے پھر مولوی بدنام ہوئے. پھر وہ دوسروں کے گھر سے کھانا آئے گا تو کھائیں گے نا، ان کی نظریں. پھر مولوی صاحب کی روٹی بڑی بدنام ہو گئی، پھر ان کا حلوہ بدنام ہو گیا. نہیں، اسلام اس چیز سے قطعاً منع نہیں کرتا. ایک اچھا عالم ایک اچھا تاجر بھی ہو سکتا ہے، لکھیے اپنے پاس بڑا بڑا کر کے، ایک اچھا خطیب ایک بہترین قسم کا کمپیوٹر ماسٹر بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح کے جتنے پروفیشن ہیں، کوئی چیز اس میں بری نہیں. لیکن ہم کیا کریں اپنی سوچوں کا حال کہ ہمارا دل ہی نہیں مانتا کہ ایک نیک شخص کوئی کاروبار بھی کرے یا جاب بھی کرے اور اس کے ساتھ دین کو لے جائے. تبھی تو دو مختلف بانٹے ہیں نا ہماری سوسائٹی میں، مسٹر اور ملا کی، ان کو کاٹنے کی بات ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں آپ کو اس کا ماخذ مل گیا کہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کوئی گوشت پوشت کا آدمی تھوڑی تھا جس کو زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہوتی. کم از کم کوئی ایسا ہوتا، کوئی بادشاہ ہو جاتا، چلو کوئی ایسی بلند ہستی ہوتی جس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی، لوگوں کو دکھتا نہ، لوگ ان کی زیارت کے لیے جمع ہو جاتے، لوگ ان کے ہاتھ کو چومنے کے لیے لائنوں میں لگے ہوتے، یا याद रखिए कि इस तरह का दीन दीन नहीं है कि चंद शख्सियतों के अंदर उलझ कर आप उनके हाथों के बोसे ले लें, आप उनकी गद्दी नशीनी करवाते जाएं और इस तरह से काम करें का बहुत पहुंचे हैं जी, बहुत बड़े हैं हमारे शेख साहब, हमारे पीर साहब। नहीं, ये नबी तो बाजारों में जूतियां भी चिड़खाएगा, इसको तो मेहनत की कमाई भी करनी है, अलकासिब हबीबुल्लाह पे अमल भी करना है कि मेहनती अल्लाह का दोस्त है। ये कोई अपनी ठाट बनाने के लिए थोड़ी आया, ये लोगों को कोई मौजज़े दिखाने नहीं आया, ये लोगों की हिदायत के लिए आया। तो लिहाजा कहने लगे क्यों नहीं उतरा इसके साथ कोई फरिश्ता जो इसके साथ डराने वाला होता, यानी ना मानने वालों को धमकाता कि पीछे हो जाओ तुम्हें नहीं पता। गोया के जैसे बादशाहों के साथ अर्दली होते हैं या दरबारी होते हैं, इस नबी के साथ एक फरिश्ता होता, हर वक्त हाथ में कोड़ा लिए रहता और लोगों से कहता मानो, नहीं मानते तो देखो अभी अजाब का कोड़ा बरसता है, देखो अभी अल्लाह की पकड़ आती है। हाँ, ये तो बड़ी अजीब बात है कि कायनात का मालिक एक शख्स को नबूवत का मनसब अता करे और अकेला छोड़ दे बेचारा, वो लोगों से गालियां खाता रहे, पत्थर खाता फिरे। आज भी देख लीजिए, लोग किसी के दीन को पहचानने के लिए अमूमन ऐसी चीजें देखते हैं, क्या प्रोटोकॉल है, कितनी गाड़ियां उनके आगे पीछे हैं, कौन उनके इशारे पे चलता है। और अगर किसी दीनदार को जरा सा वो नेचुरल या आम लोगों की तरह जिंदगी के मामलात करता देखता चलता फिरता सफर करता देख ले तो कहते हैं कि अच्छा ये तो कोई बहुत बड़े तो नहीं फिर होंगे, वरना तो ऐसा ना होता। असल में यहाँ भी मादा बरसती है, लोग इस तरह की बातें करके अपनी अंदर की बात खोल रहे होते हैं कि हमारी नजरों में अगर कदर है तो वो किसी के माल असबाब की है, पैसे की है। फिर आप देखिए कि बंदा अपने लफ्जों से पहचाना जाता है, सिर्फ इतनी बात कह के चुप कर जाते तो शायद उनके अंदर की जो गंदगी थी या खबासत थी वो छुपी रहती, अगला जुमला बोलकर उन्होंने अपने मादा प्रस्ताना जहन को खुद ही और खोल दिया। कैसे? او يلقى اليه كنز او تكون له جنه ياكل منها, और कुछ नहीं तो इसके लिए कोई खजाना ही उतार दिया जाता, ये इसके पास कोई बाग ही होता जिससे इत्मीनान की रोजी हासिल करता। ये देखिए फिर वही सोचे, कहते थे कि ये खजाना क्यों नहीं है इनके साथ, कोई बात तो नहीं बनती दिखती, ये कैसी बात है कि ऐसे शख्स को मान ले, कम अज कम अल्लाह ताला इतना तो कर देता कि ऐसे शख्स की माश का कोई अच्छा से इंतजाम ही कर देता, क्योंकि आखिर ये अल्लाह ही का तो काम करने के आया दुनिया में। हाँ चलो कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ा रईस ना अल्लाह इसको बनाता, कोई मामूली रईस ही बना देता इनको। आप सोचिए कैसा, यानी एक अंदाज दिखता है कि जिसके अंदर से हमें बू आती है ना, दुनियादारी की बू आती है। और बस लोग वाकई जब दीन का काम करने लग जाते हैं ना, तो अपनी इज्जत रखने या इस किस्म के इल्जाम से बचने के लिए फिर ऐसी चीजें या तो करते नहीं या फिर लोगों से छुपाने लगते हैं, दोनों ही बातें दुरुस्त नहीं है। फिर ऐसी बात करने वालों को आप देखिए कि एक और चीज भी जहन में रखनी चाहिए, और वो क्या कि अगर बिन फर्ज सब कुछ हो जाता तो जो अमल तुम्हें करना है वो तो करना ही पड़ेगा। तुम्हें जो ये कह रहा है वो काम जो है उसका इसकी जात से क्या ताल्लुक है? देखिए एक बात अपनी जिंदगी में लिख लें, बहुत फायदा रहेगा इंशाल्लाह, बहुत बड़े धोखों से बच जाएंगे, बड़ी चोटें खाने से, बड़े गलत फैसलों से बच जाएंगे, बड़ा बड़ा करके लिखें। और वो क्या है कि किसी दीन वाले की जात, उसके मामलात, उसका जीना, उसका मरना, उसका खाना, उसका भूखा रहना, इससे मेरे अमल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास एक क्राइटेरियन होना चाहिए, एक फरकान होना चाहिए, और वो क्या कि मुझे उसकी बात से फायदा हो रहा है कि नहीं, दैट्स इट। अगर मुझे किसी की कोई बात सुन के फायदा हो रहा है ना, तो बस मुझे सुन लेनी है, मुझे नहीं है कि वो कौन है, वो किसका एजेंट है, उसके प्लान्स क्या हैं, उसके मंसूबे क्या हैं, वो क्या सोच के काम कर रहा है, उसकी नीयत क्या, आपको और मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, वे मुझे फायदा दे रहा। देखिए डॉक्टर के पास जाते हैं ना, बीमार है, दवा लेने जाते हैं ना, कोई वहां जाके अगर इस बहस में पड़ जाए, इसने इतना महंगा ऑफिस क्यों बनाया, इसने इतनी कुर्सियों को इस तरह का फॉर्म क्यों लगाया, और इसने कारपेट क्यों नहीं बिछाया, दोनों तरह से कर सकते हैं ना बात। और ये कह के उठ के चलो जी मैं जाता हूँ यहाँ से, देखो देखो इसने यहाँ ये क्यों किया और ये क्यों नहीं किया, तो जो गया उसका क्या होगा, नुकसान उसका होगा। डॉक्टर को क्या लगे भाई तुम्हारे लिए, तुम इस सोफे पे बैठो, ये सूद के पैसे का है, ये कर्ज के पैसे का है, ये हलाल का है, तुम्हारी बला से, ये गवर्नमेंट ने दिया है या उसने खुद लिया है, तुम्हें तो बीमारी दूर करनी है। जिन लोगों के दिलों में हिदायत की सच्ची तलब होती है, नंबर एक। दूसरी बात, जो वाकई अपने लिए बेहतरीन सदका जारिया करने वाले लोग होते हैं, वो हमेशा चीजों को इस एंगल से परखते हैं कि हमें इस शख्स से क्या मौका मिला, हमें नेकी का मौका मिला। बस आप देखिए कि अल्लाह के नबी दीन लेकर आए ना, तो सहाबा कराम ने जिन्होंने आपका इस दीन में इस्तकबाल किया, आपका साथ दिया, उनको भी तो अल्लाह ने बहारे दगा दी ना। और एतराज करने वाले आज भी पीछे, जो लोग ये नबी पर एतराज कर रहे थे कि आज उनमें से कोई एक भी हमें दिखता है, नहीं है ना, हमेशा उनके लिए बुरे ही लफ्ज आएंगे ना, तो बचा कौन, जिसने इस हक को पा लिया। हमारी बला से कोई क्या करे क्या नहीं करे, हमें उससे फायदा ले लेना है। ये मियाद जब अपनी जिंदगी में रखेंगे ना, तो इंशाल्लाह तासुब से भी बचेंगे और बहुत सारी चीजों को अपनी जिंदगी में लेकर आएंगे जिससे आपको फायदा होगा। और हकीकत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चूल्हा नहीं जलता था, अक्सर तो जौ की रोटी पकती थी और दो दो महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसे लोग फिर इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली रब्बिका वन्हर इन्न शानियक हुवल अबतर, इसको क्यों नहीं पढ़ते कि क्या हुआ अगर आज दुनिया में चूल्हा नहीं जला तो हमने आपको हौज़े कौसर का मालिक तो बना दिया, अल्लाह ताला ने तो आपके लिए वहां खैर रखी हुई है, अल्लाह ताला ने आपको ऐसे खजाने दिए हुए हैं जिसको पाने के लिए तो दुनिया की हर नेमत छोड़ दी जाए तो भी थोड़ी है, उसकी तो कीमत ही बहुत है। और जिसके लिए अल्लाह ताला ने वहां क्या कुछ तैयार किया तो उसको ना माने तो ना माने, ऐसे लोग किन गलत फहमियों में है। او يلقى اليه كنز او تكون له جنته ياكل منها, ये डाला जाता है इस पर कोई खजाना या होता इसका कोई बाग, ياكل منها इसमें खा लेता। وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا, और जालिम तो कहते हैं कि तुम लोग एक सहर जदा आदमी के पीछे लग गए हो। बस ये देख लो पीछे लग गए किसके, जो खुद भी सहर जदा है और तुम पे भी जादू कर देगा। यहाँ लफ्ज मस्खूर आया है, तीन मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल हुआ। आप कह सकते हैं कि तीन असबाब होते थे अरबों में किसी शख्स को मस्खूर कहने में, जैसे हमारे जहन में भी तसव्वुर आ जाता है ना एकदम मस्खूर शख्स के साथ कि जिस पे जादू हुआ है, तो अरबों में भी कुछ इसी किस्म की बातें थी। नंबर एक, जिन पड़ गए, जिसको हमारे यहाँ भी कहते हैं ना जिनका साया हो गया, कहते थे कि इनके ऊपर जिन आ गए हैं। दूसरा, बुतों की मार पड़ गई है। देखिए वही के आने को शैतान का आना कहते थे, जिब्राइल को नौस बिल्ला वो शैतान समझते थे, हाँ इसलिए जिन पड़ने की बात करते। बुतों की मार पड़ गई क्यों कहते थे, कहते थे कि हर वक्त हमारे बुजुर्गों को हमारे बुतों को बुरा कहते रहते हैं, इसीलिए नौस ऐसी बहकी बहकी ये बातें करने लग गए। फिर उसके बाद तीसरी चीज, किसी ने आप पर जादू कर दी है। ये वही बातें, ना मानने के सौ बहाने, एतराज बराए एतराज के, छोड़ो छोड़ो ये बातें, ये तो जादू किया हुआ। और आज के दौर में इसको कहते हैं ये तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, तुम्हारे ब्रेन को वॉश कर रहे हैं। हाँ अच्छी बात है, कोई बुरी बात थोड़ी, सफाई तो नेस्पे ईमान है। वो दिमाग जो गंदे हो चुके हैं उनको तो वाकई वो वॉश होना ही चाहिए। انظر كيف ضربوا لك الامثال, देखो तो सही कैसे आपके लिए मिसालें, कैसी हुज्जतें, कैसी आपकी बातें करते रहते हैं। فضلوا فلا يستطيعون سبيلا, पर ये तो बहक ही गए और रास्ता भी नहीं सूझता इनको, अब ये कुछ नहीं पा सकते, इनकी जिंदगी में हिदायत का नूर आ ही नहीं सकता। अल्लाह कह रहे इनको छोड़ दो, इतने दलायल सुनने के बाद भी तासुब और इनाद की वजह से बिल्कुल ही अंधे हुए हैं, ये तो इस काबिल भी नहीं है कि इनसे संजीदगी के साथ बहस की जाए, ना इनके पास कोई दलील है, सिर्फ दावे करते हैं। जो सिर्फ इस तरह की बातें करके कि बाप दादा के वक्त की बातों को ये शख्स दूसरी तरह कर रहा है, तो इतराज कर रहे हैं, इनको सुनना नहीं, इनको मानना नहीं, छोड़ दो। कभी शायर कहते, कभी काहिन कहते, कभी जादूगर कहते, तो जो बंदा खुद ही नहीं समझ रहा कि वो क्या कहे, तो आप उसके पीछे क्यों पड़े, छोड़ दो। ये जो फला यस्तती ना सबील है ना, इसको जरा इमेजिन करें, फदल्लू के लफ्ज से शुरू करके। मुझे इस आयत को पढ़ते हुए जो मेरे इमेजिनेशन में जो चीज इसको पढ़कर आई वो क्या है कि एक अंधेरा कमरा है, सब जा रहे थे, एकदम लाइट चली गई, और कुछ लोग है ना वो इधर जा रहे हैं तो आगे दीवार आती है, थोड़ा आगे जाते तो ठोकर लग रही है, आगे जा रहे हैं तो पानी का कोई बर्तन रखा हुआ है, यानी समझ ही नहीं आ रही कहाँ जाए। जैसे राइड्स होती है ना, कुछ भूत बंगले वगैरह खौफनाक से मंजर पेश किए होते हैं, बिल्कुल ऐसी आता है कि इनको सूझ ही कुछ नहीं रहा कि क्या इस नबी को टाइटल दें। यहाँ सूझने से मेरा ये भी है कि आपको मुख्तलिफ लफ्ज जो आपके बारे में ये बोलते जा रहे हैं ना, इनको खुद ही नहीं पता कि इसके बारे में कोई एक बात करें। और पीछे वो वाकया कर चुके हैं जिक्र कि कैसे इन लोगों ने बैठ के बातें की, कोई कहता है इसको मजनू मशहूर कर दें, किसी ने कहा काहिन कर दें, कोई ने कहा दीवाना कर दें, शायर कर दें। लेकिन इनका एक सरदार था गालिबन वलीद बिन मुगीरा, तो उसने कहा नहीं, सबको पता जादूगर कैसे होते हैं, ये ना मानो, यानी काहिन ना कहो, बल्कि सब फिर आखिर में चलो जादू कह देते हैं क्योंकि इस पे जादू हो गया है। तो ऐसी बातें करके अल्लाह ताला कह रहे हैं अपने आप को रास्तों से भटका रहे हैं। अब देखिए कि यहाँ पे वो टॉपिक पूरा होता है, यहाँ तक तिलावत सुनते हैं और साथ ही साथ अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें दिलों में रासिख होने वाला ईमान अता फरमा, हम हुज्जतें और एतराजात करके अपने रहे सहे दीन को जाया ना कर दें, कि जो बातें भी हमने थोड़ी बहुत दीन की सीखी की उसको वेस्ट कर दें। मुहासबा करते हुए तिलावत सुनते हैं और इंशाल्लाह फिर आगे टॉपिक चेंज होगा।
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا